30 अगस्त दिन गुरुवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में मार्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस।
Earlier it was the आदिवासी कम्युनिटी who were being called Maoists. Now the Dalits are being included and anyone who supports them.
बताएंगे असम में नागरिकता के आधार में लटके ज्योतिका दास परिवार की कहानी।
अभी पूरा असम का अंदर मतलब सिलचर का अंदर मेरे को बेल मिला है। मैं ऊपर वाला से दिन भर प्रार्थना किया हूँ। मेरा बीवी बच्चा भी बहुत दौड़ के मतलब बेल लिया है। मैं जब आया उस दिन रात हो गया आने में।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। दिल्ली में आज मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और लेखकों के यहाँ छापेमारी और 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बुद्धिजीवियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मार्च का आयोजन किया। बुद्धिजीवियों ने कहा कि इस तरह के कार्रवाई से दलितों और शोषित वर्गों की आवाज़ को कुचलने की कोशिश हो रही है। भारत प्रशासित कश्मीर को भारतीय संविधान के तहत मिलने वाले विशेष दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई से पहले क्षेत्र में स्कूल, दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। अलगाववादी नेताओं ने दिल्ली में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई से पहले 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया था। अलगाववादी समूहों का कहना है कि विशेष दर्जे को कानूनी रूप से चुनौती देना भारत की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार द्वारा कश्मीर के धार्मिक स्वरूप को बदलने की कोशिश है। अमेरिका ने भारत को चेताया है कि अगर वो रूस से नए हथियार खरीदता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिलने की कोई गारंटी नहीं है। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी रैंडल श्रीवर ने भारत द्वारा रूस से आधुनिक S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे जाने की संभावनाओं पर कहा कि भारत को इसके विकल्पों पर विचार करना चाहिए। अभी अमेरिका के मौजूदा नियम कहते हैं कि अगर कोई देश रूस से रक्षा सौदा करता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लग सकते हैं। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने इदलिब में लोगों के लिए सुरक्षित रास्ते खोलने की अपील की है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाने वाली है। रूस ने कहा है कि इदलिब की समस्या का समाधान न करना सही रास्ता नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इस इलाके को आतंकवाद का अड्डा करार दिया। उन्होंने कहा कि भूमध्य सागर में रूस के नौसैनिक अभ्यास शनिवार से शुरू हो जाएंगे और सीरिया के मौजूदा हालात में ऐसा करना जरूरी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा, सीरिया में अभी हालात ऐसे हैं कि वे और ज्यादा पेचीदा हो सकते हैं। इदलिब के आसपास की स्थिति ठीक नहीं है। वहां जो आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है उसे लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती। ये थे क्रेमलिन के प्रवक्ता के शब्द। चीन ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी की एक बार फिर निंदा की है जिसमें उन्होंने उत्तर कोरिया के निरस्त्रीकरण में देर के लिए उसे जिम्मेदार बताया था। बुधवार को फिर से ट्रंप ने कहा था कि व्यापारिक विवादों के कारण चीन अमरीका के प्रयासों को नुकसान पहुंचा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ शुनियंग ने कहा कि ट्रंप का ऐसी बातें करना समझ से परे है। मेरे ख्याल से मेरे जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और गैर जिम्मेदाराना बेतुका तर्क देने के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। कोई भी अमेरिका के इस तर्क को समझ नहीं पा रहा। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इथियोपिया में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 18 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी अदिस अबाबा के बाहरी हिस्से में सेना का हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा। प्रशासन का कहना है कि इस घटना में हेलीकॉप्टर पर सवार किसी भी शख्स की जान नहीं बच पाई है। पाकिस्तान में एक इस्लामिस्ट पार्टी के हजारों समर्थक राजधानी इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। फिर नीदरलैंड में अति दक्षिणपंथी राजनेता गीट विल्डर्स द्वारा पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों की प्रतियोगिता करवाए जाने की योजना का विरोध कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक पार्टी का कहना है कि यह प्रतियोगिता ईश निंदा करती है और इसके लिए पाकिस्तान में नीदरलैंड के राजदूत को वापस भेजा जाना चाहिए। परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने वाले संयुक्त राष्ट्र के संगठन IAEA ने कहा है कि ईरान 2015 में हुए परमाणु समझौते की शर्तों का पूरी तरह पालन कर रहा है। IAEA की ताजा रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने डील में लगाई गई शर्तों का पालन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस परमाणु समझौते से पीछे हटने के बाद ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। दो दिनों पहले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और लेखकों के यहाँ पड़े छापों और 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर मार्च का आयोजन हुआ। कल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हुई गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई भी हुई, जिसके बाद अदालत ने 5 लोगों को पुलिस हिरासत में नहीं बल्कि अपने घरों में ही नज़रबंद करने का हुक्म सुनाया था। इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को है। आज हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमा हुए बुद्धिजीवियों ने इन गिरफ्तारियों को दलितों और समाज के दूसरे शोषित तबकों की आवाज दबाने की कोशिश का हिस्सा बताया। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
दिल्ली के प्रेस क्लब के प्रांगण में जमा हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता, मजदूर नेताओं, लेखकों और एक राजनीतिज्ञ की स्पीच का फोकस उस शब्द अर्बन नक्सल्स पर रहा जो पिछले दिनों बार बार सुनने में आ रहा है। साथ ही लोगों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित घटती लोकप्रियता और 2019 आम चुनाव से भी जोड़ा। मशहूर लेखिका अरुंधति राय ने कहा कि नक्सल और माओवादी शब्द का इस्तेमाल अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के लिए किया गया है।
Earlier it was the Adivasi community who were being called Maoists. Now the Dalits are being included and anyone who supports them.
पहले माओवादी शब्द का इस्तेमाल आदिवासियों के लिए किया जाता था, अब दलितों को इसमें शामिल कर लिया गया है और हर उस किसी को जो उनके समर्थन में खड़ा हो। ये थे अरुंधति रॉय के शब्द। पुलिस ने गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का संबंध मुंबई के पास भीमा कोरे गांव में 1 जनवरी को हुई हिंसा से बताया है। ये हिंसा उस कार्यक्रम के दौरान हुई थी जिसे दलित समाज सालों से दलितों की पेशवा की सेना पर विजय के रूप में मनाता रहा है। गुजरात से सांसद जिग्नेश मेवानी ने कहा कि ये दलितों के भीतर आ रही चेतना के दमन का हिस्सा है। उन्होंने इसी सिलसिले में ऊना की घटना, सहारनपुर में दलितों के खिलाफ हुई हिंसा और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि यह गुजरात मॉडल का हिस्सा है जहां नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़े पैमाने पर इस नाम पर फर्जी इनकाउंटर किए गए कि जिहादी मोदी को मारना चाह रहे थे। जिग्नेश मेवानी ने 5 सितंबर को देश भर में रैलियों के आयोजन और 15 सितंबर को ललकार परिषद की घोषणा की। अरुंधति राय ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी, बैंकों की लूट से लोगों का ध्यान हटाने और मोदी की गिरती लोकप्रियता को रोकने का ये एक प्रयास है। दूसरे वक्ताओं ने भी अर्बन नक्सलिज्म को झूठ करार दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस प्रमुख प्रकाश सिंह कहते हैं कि नक्सलवाद के 2 रूप हैं, जिसमें एक देहाती इलाकों है जिसका काम है सशस्त्र आंदोलन के माध्यम से राज्य सत्ता को उलटना और दूसरा हिस्सा है शहरी नक्सलवाद या अर्बन नक्सलिज्म।
अर्बन नक्सलिज्म से मतलब यह है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो विद्यार्थियों में है, टीचर्स में है, एडवोकेट्स में है, डॉक्टर्स में है, इंजीनियर्स में है, इनमें अपनी पैठ बनाना और इनको अपनी आइडियोलॉजी से, अपने राजनीतिक दर्शन से इनको प्रभावित करना और इनके द्वारा फिर एक समाज में ऐसा अंदर ही अंदर बौद्धिक तरीके से आपके विरुद्ध हो जाए तो बिना लड़े लड़ाई जीती जा सकती है।
प्रकाश सिंह नक्सलवाद पर एक किताब भी लिख चुके हैं। वो कहते हैं कि इस खतरे की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। फैसल मोहम्मद अली, BBC, दिल्ली।
भारत प्रशासित कश्मीर में आर्टिकल 35A की कानूनी मान्यता को चुनौती देने के खिलाफ आज कश्मीर बंद रहा। कल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A पर सुनवाई होनी है। उधर उत्तरी कश्मीर में आज एक मुठभेड़ में 2 चरमपंथियों को पुलिस ने मारने का दावा किया है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A को लेकर होने वाली सुनवाई के एक दिन पहले आज कश्मीर का आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। अलगावादियों की बंद कॉल को लेकर कश्मीर के सभी कारोबारी इदारे, स्कूल, कॉलेज बंद रहे, जबकि सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रही। श्रीनगर के एक दुकानदार मुदस्सिर अहमद का कहना था,
पूरे कश्मीर में इसलिए हड़ताल थी क्योंकि हम अपोज कर रहे हैं 35A आर्टिकल को, जो कि हमारे स्टेट की डिग्निटी है, वो हम नहीं छीनने देंगे किसी भी सूरत हाल में। इसीलिए जो है आज पूरा कश्मीर, पूरा J&K बंद रहा है।
जम्मू क्षेत्र के रजौरी और पुंछ में भी 35A को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती देने के खिलाफ आज हड़ताल की गई थी। अंजुमनी तहरीक कोऑर्डिनेशन कमेटी के उप अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद ने टेलीफोन पर BBC को बताया,
आज का जो 35 पार्टी से एक जो हमारी कॉल थी ऑल पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी बनी हुई है, तो वो उसमें उलमा की सदारत उलमा की जो निगरानी में ये सारा हमारा काम था। आज बंद की कॉल अल्लाह के फजल पर उससे बड़ी अच्छी कामयाब रही, जिसमें तमाम जितने भी संगठन थे, व्यापार मंडल था, टूर ट्रेवल एजेंसी, बस ऑपरेटर से जितने भी पूरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ जो हमारा टोटली बंद था, बाकी पूरी मार्केट और पूरी जो जितने भी ट्रैफिक है तमाम बंद थी, और अल्लाह के फजल करम से तमाम लोग जो है इस चीज के हक में कि ये हमारा जो हक आईनी हक है इसको छेड़ा ना जाए।
राजधानी श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी आज 35 ए की कानूनी मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को गुरुवार सुबह से ही अपने घर में नजरबंद रखा गया है। श्रीनगर के कई इलाकों में प्रदर्शनों को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त प्रतिबंध लगाए थे और जगह जगह सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। कल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35 ए की कानूनी मान्यता को चुनौती देने को लेकर सुनवाई है। अलगाववादियों ने कल भी कश्मीर बंद बुलाया है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर 35 ए की कानूनी मान्यता को चुनौती दी थी। आर्टिकल 35 ए से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है। इस दौरान आज उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपोरा के हाजिन इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दो चरमपंथियों को मारने का दावा करते हुए बताया है कि मारे गए चरमपंथी पाकिस्तानी नागरिक थे, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद किया गया है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने गुरुवार को श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सईद सलाहुद्दीन के बेटे सईद अहमद शकील को टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। सईद शकील कश्मीर के सिक्किमज मेडिकल इंस्टीट्यूट में नौकरी कर रहे हैं। बीते साल सईद सलाहुद्दीन के एक और बेटे सईद शाहिद को भी टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। सईद शाहिद इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
खबर सच है अगर BBC पर है।
चारा घोटाले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज रांची स्थित CBI की विशेष अदालत में सरेंडर किया। यहां से उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजा गया। लालू औपबंधिक जमानत पर थे और पिछले हफ्ते झारखंड हाईकोर्ट ने औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए उन्हें 30 अगस्त तक सरेंडर करने को कहा था। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं रांची से नीरज सिन्हा।
जेल भेजे जाने के बाद दिन के करीब 4 बजे लालू प्रसाद को फिर से इलाज के लिए सरकारी अस्पताल रिम्स लाया गया। जाहिर है पिछले 8 महीने से सरेंडर, सजा, जेल, रांची, दिल्ली, मुंबई के अस्पताल में इलाज, इन सब दौर से लालू गुजरते रहे हैं। वैसे लालू की मुश्किलें और भी हैं। हाल ही में रेलवे टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लालू, उनकी पत्नी रावड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत 13 लोगों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। उसी मामले में शमन भी भेजा गया है। सरेंडर करने के बाद जमानत को लेकर आगे क्या कोशिशें होंगी और प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामले में कार्रवाई पर बता रहे हैं लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार।
हम लोग को हाईकोर्ट में अभी मूव करने का तो कोई अभी विचार नहीं हुआ है। अब आज तो सरेंडर ही किया है, 2-3 दिन में हम लोग डिसाइड करेंगे कब तक बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे। और दूसरा की जो ED का जो समन है, आज हम लोग सरेंडर करने के बाद जो है कोर्ट से सर्टिफिकेट के लिए है कि हमको समन आया हुआ है ED केस में दिल्ली से भी, और उसमें कल अपीयरेंस के लिए डेट फिक्स किया गया था, तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिल गया। हम लोग वहाँ के वकील साहब को भेज दे रहे हैं, अकॉर्डिंगली वहाँ के वकील साहब कोर्ट में मूव कर देंगे।
गौरतलब है कि चारा घोटाले के 4 मामले में लालू को सजा सुनाई गई है। इलाज के सिलसिले में पिछले 11 मई को उन्हें औपबंधिक जमानत मिली थी। सरेंडर करने के लिए लालू बुधवार की शाम पटना से रांची पहुंचे थे। रांची में उनसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, RJD की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी सरीखे नेताओं ने मुलाकात की। इस मुलाकात में राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। उधर पटना से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, RJD के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी समेत कई नेता कार्यकर्ता भी रांची पहुंचे हैं। लालू के समर्थन में रघुवंश प्रसाद फिर अपने पुराने अंदाज में दिखे। उन्होंने कहा है,
CBI तो एजेंसी है उनकी, ED कौन है, लेकिन IG कौन है ना? अरे सब केंद्र की सरकारी सभी एजेंसियों को लगा दिया है एक परिवार के पीछे।
शिवानंद तिवारी का भी कहना है कि लालू प्रसाद विपक्षी गोलबंद की धुरी बने हैं और BJP तथा उसकी सरकारों का हमेशा से विरोध करते रहे हैं। लिहाजा लालू और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, लेकिन आरजेडी इन मुश्किलों का मजबूती से सामना करता रहेगा। तब झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर पलटवार करते हैं।
लालू यादव एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको बेल मिली थी और कोर्ट के आदेश पर उनको सरेंडर करना पड़ा है, और मोदी जी ने उनको नहीं कहा था कि वो जाके चारा घोटाला करें। जब वो फंसे थे तो उनके प्रधानमंत्री दिल्ली में थे, उनकी सरकार बिहार में थी। जब वो पहली बार जेल गए तो भी दिल्ली में उनके प्रधानमंत्री थे, बिहार में उनकी सरकार थी। तो एक ढंग से न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देना इन लोगों का सजल हो चुका है।
इस बीच रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने बताया है कि लालू प्रसाद को कार्डियोलॉजी यूनिट में भर्ती कराया गया है और पहले की तरह डॉक्टर उमेश प्रसाद के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम उनका इलाज करेगी। देखना बाकी होगा लालू इन संकटों से कैसे और कब तक निकल पाते हैं। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। आज गुरुवार है और आज के दिन आप सुनते हैं अपने पत्रों के उत्तर।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और हमेशा की तरह आज सूर्यांशी पांडे फिर मेरे साथ हैं।
नमस्कार, मैं सूर्यांशी पांडे।
और सूर्यांशी, चिट्ठियां हैं आपके पास, ईमेल्स हैं।
हाँ।
तो आज कांटे हैं या फूल हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं?
मैं कहूंगी राजेश जी, जैसे
मिला जुला गुलदस्ता है जिसमें फूल भी
कांटे भी मिलते
हैं
और फूल भी। हाँ
जी।
पहला मेल भेजा है प्रदीप नेगी ने, ये चोपटा चमोली गढ़वाल से लिखते हैं,
उत्तराखंड से जी।
हाँ हाँ। और ये लिखते हैं कि इमरान खान पर केंद्रित दुनिया जहां उन्हें बेहद पसंद आया, और इनकी एक शिकायत है कि एशियाई खेलों को कुछ और समय दिया जाना चाहिए।
ये शिकायत इनकी मुझे लगता है मुझसे ही है, क्योंकि कल मैं ही कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था। ऐसी एक चिट्ठी और मैं मेरे नजरों से गुजरी है। हाँ, पढ़िए। तो
वो गौतम दत्ता ने भेजी है बहादुरगंज किशनगंज बिहार से, और उन्होंने लिखा है कि इंडोनेशिया में हो रहे एशियाड खेलों के लिए रिपोर्टिंग का समय नहीं बचता है, और राजेश जोशी द्वारा खेल पत्रकार अमनप्रीत सिंह को यह कह दिया जाता है कि जल्द से जल्द एक सेकंड में अपनी पूरी बात कह दीजिए।
ये मैं इसका गुनहगार अगर कोई है तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी जिन श्रोताओं को ऐसा लगा कि हमने खेल समाचारों को समय कम दिया, अगर वो एक दिन स्टूडियो में आके हमारे साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करें और घड़ी की सुइयां जैसे भागती हैं उस वक्त कार्यक्रम आखिर की तरफ बढ़ रहा होता है और समय को मैनेज करना होता है, वो थोड़ा सा एक मतलब बहुत असंभव चीज तो नहीं है, मुश्किल है। तो उसमें कल ये हुआ कि हमने सूर्यांशी पांडे, आपने जो यूएस ओपन्स के बारे में खबरें दी थी और जकार्ता से हमारे पास खबर थी, उनके लिए इतना ही समय बच पाया, लेकिन मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ कि पूरी खबरें आपको नहीं सुना पाए।
ये अगला मेल जो है वो नरसिंह बहादुर सिंह शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, और इनका ये कहना है कि अखबारों की समीक्षा प्रस्तुत करने वाले स्टूडियो में आकर कोई होमवर्क नहीं करते हैं, और सीधा बोलने में उनका वाक्यों और शब्दों का विन्यास त्रुटिपूर्ण हो जाता है।
क्या इन्होंने कोई उदाहरण दिया है?
हाँ, इन्होंने उदाहरण दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बारे में बताते हुए सर्वप्रिया सांगवान ने कहा कि सेफ्टी वॉल्व फट जाएगा, जबकि कहना चाहिए था कि प्रेशर कुकर
फट जाएगा। हाँ। हालांकि इन्होंने आगे सर्वप्रिया सांगवान की तारीफ भी की है, लेकिन कभी कभी जबान फिसल जाती है, इस पर बहुत होना नहीं चाहिए। आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, तो उसके लिए हम क्षमा ही मांगते हैं। आपने हमारा ध्यान उसकी ओर दिलाया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। सूर्यांशी, अगर अब आपकी इजाजत हो तो एक पोस्टकार्ड मैं लेता हूं, जो हमारे श्रोता हैं अकरम हुसैन प्रिंस, उन्होंने महसौल सीतामढ़ी बिहार से लिखा है। लिखते हैं, केरल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से सलमान रावी की रिपोर्टिंग काबिले तारीफ है। केरल के सुदूर इलाकों से रिपोर्टिंग के लिए रावी साहब और बीबीसी धन्यवाद के पात्र हैं। ये कहना है अकरम हुसैन प्रिंस साहब का। और लगे हाथों एक और मैं चिट्ठी पढ़ लेता हूँ,
इसमें भी मेरे ख्याल से उन्होंने सलमान रावी की ही तारीफ की है।
जी हाँ। इसमें बीबीसी परिवार को प्यार भरा नमस्कार। केरल में बाढ़ की विभीषिका के बारे में सलमान रावी द्वारा भेजी जा रही रिपोर्टें अद्वितीय हैं। ये लक्ष्मण दास शर्मा जी हैं जो हरियाणा से नारनौल से हमें चिट्ठियां लिखते हैं। उनका अंतर्देशीय लिफाफा आया है। और जल्दी से बता दूं, कानपुर से हमारे एक नाराज श्रोता हैं अक्षय, उन्होंने मेरी आलोचना की है। उसमें लिखा है कि स्वर्गीय अटल जी को दी गई राजेश जोशी जी की श्रद्धांजलि शब्दावली को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटल जी से सीखने की बात ऐसे कही गई मानो मोदी जी एक प्राथमिक पाठशाला के छात्र हों। बीबीसी की साख को रसातल में पहुंचाने वाले संवाददाता तथा उद्घोषक अब भी मोदी के चरित्र की पावनता तथा गहराई की थाह नहीं ले पाए हैं। अक्षय जी, आपकी नाराजगी मैं समझता हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का कद इतना ऊंचा था कि खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि लालकृष्ण आडवाणी तक कहते हैं कि वो मेरे नेता थे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी को आडवाणी अपना नेता मानते थे। पूरा आंदोलन लालकृष्ण आडवाणी ने उसको नेतृत्व दिया, लेकिन जो उसकी राजनीतिक फसल हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एतराज की बात है। नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत जूनियर भी थे, और अनुभव में भी और उम्र में भी।
ये आखिरी खत लिखा है हर्षित सिंह, जो लिखते हैं, मैं बर्दिया पिपरैचा हाता कुशीनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और कक्षा 9 का छात्र हूं।
अरे वाह, बहुत छोटी उम्र में बीबीसी सुनते हैं, और सुनते ही नहीं है बल्कि अपनी टिप्पणी से हमें अवगत भी कराते हैं।
हाँ, और मैं नियमित आपका श्रोता हूं, मुझे बीबीसी सबसे अच्छा लगता है और आदेश कुमार गुप्त सबसे अच्छे संवाददाता लगते हैं।
ये सबसे अच्छी बात हुई कि आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्टिंग आपको बहुत पसंद आती है, इसका मतलब खेल में आपकी दिलचस्पी है। हर्षित, लगातार सुनते रहिए बीबीसी और अपने दोस्तों को भी सुनाइए। फिलहाल हमारा समय हो गया है, तो चलते चलते पता बता दें, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में पिछले एक दशक से अवैध विदेशी नागरिकों और संदिग्ध वोटरों की शिनाख्त करने की मुहिम जारी रही है। हाल ही में आई नागरिक रजिस्टर लिस्ट यानी NRC में भी करीब 40 लाख लोगों के नाम लिस्ट से बाहर है। नागरिकता के अधर में लटके लाखों परिवारों में से एक ज्युतिका दास का भी परिवार है, जिसे बीबीसी पिछले 4 हफ्तों से ट्रैक कर रहा है। सुनिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की विशेष रिपोर्ट।
एक जानी पहचानी सड़क पर हम फिर से निकल पड़े थे। असम के सिलचर शहर से करीब 2 घंटे दूर अमराघाट गाँव का सफर इस बार कितनी जल्दी खत्म हुआ पता ही नहीं चला। पिछले एक महीने में यह हमारी 8वीं यात्रा थी, और इस बार गांव में घुसते वक्त दुकानदारों से लेकर सब्जी वालों के चेहरे हमें देख मुस्कुरा से उठे। गाड़ी उसी घर के सामने रुकी जिसमें से पिछली बार एक पत्नी और माँ का सिसकना ही सुनाई पड़ता था, जिसके पड़ोसियों की नजरें हर मेहमान को बारीकी से निहारती थीं। 29 जुलाई 2018 को इसी घर के आंगन में आंसुओं से भरी एक पत्नी प्रार्थना करके पति से मिलने सिलचर सेंट्रल जेल गई थी। ज्योतिका दास ने बीबीसी से अपनी विवशता पर उस दिन भी बात की थी।
घर नदी के मुहाने पर है, इसलिए आए दिन सांप आ जाते हैं। बच्चों को देखूं, खाना बनाऊं या दुकान संभालूं। वकील की फीस भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज फिर से जेल जा रहे हैं उनका हाल लेने। 11 बार जा चुके हैं और हर मुलाकात में ज्यादा दुबले और बीमार दिखे।
इस बात को अब कुछ हफ्ते होने को आए। इस बार भी जब हम घर में दाखिल हुए तो नजारा काफी कुछ पहले सा ही था। आंगन में छोटे मंदिर के सामने अगरबत्ती जल रही थी और एक बड़ा सा दिया भी, लेकिन इस बार प्रार्थना में शुक्रिया का भाव ज्यादा और दर्द की टीस कम थी। भीतर कमरे में ज्योतिका के पति अजीत दास की गोद में दोनों बच्चे बैठे बिस्किट खा रहे थे, और बगल में ज्योतिका दास दोपहर का खाना पका रही थी। एकाएक उठ खड़े हुए अजीत दास ने हमसे कहा,
अभी पूरा आसाम का अंदर मतलब सिलचर का अंदर मेरे को बेल मिला है। मैं ऊपर वाला से दिन भर प्रार्थना किया हूँ। मेरा बीवी बच्चा भी बहुत दौड़ के मतलब बेल लिया है। मैं जब आया उस दिन रात हो गया आने में, तो आते थे मेरा दोनों बच्चा सो रहा था, मेरा आवाज़ सुनते ही उठ गया उन लोग। उठने के बाद बहुत खुश हो गया।
जुलाई महीने में ही अजीत से हमारी मुलाकात सिलचर सेंट्रल जेल में हुई थी। 2.5 महीने से वे जेल के भीतर बने डिटेंशन कैंप में कैद थे, और हम उनके परिवार के साथ उनसे मिलने गए थे। अजीत का नाम असम के डी वोटर यानी संदिग्ध वोटर श्रेणी में है, और इन मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत यानी विदेशी ट्राइब्यूनल ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। पत्नी ज्योतिका दास यहाँ से 2 घंटे दूर अमराघाट गाँव में बच्चों को भी देखती थी और किसी तरह दुकान को भी चला रही थी, जिससे खर्चे पूरे हो सकें और वकीलों की फीस का इंतजाम भी। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के बाद दक्षिण असम के कछार प्रांत में अजीत दास पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें डिटेंशन कैंप से जमानत पर रिहा किया गया है। आज ज्योतिका दास पहले से तो बेहतर हैं, लेकिन एक छोटे से डर के साथ। उन्होंने कहा,
बेटी का इलाज दोबारा शुरू हो गया है। अगली चुनौती कर्जा चुकाने की है। पति दुकान पर बैठने लगे हैं, लेकिन हर दो दिन पर कोई बुरा सपना देख लेती हूँ। कब खत्म होगा ये सब पता नहीं।
अजीत और ज्योतिका की बड़ी बेटी 4 साल की है और ऑटिज्म यानी शारीरिक रूप से विकलांग है। जमानती आदेश में इस बात का जिक्र है कि अब अजीत अपने बेटी का रुका हुआ इलाज शुरू करा सकते हैं। गांव लौट आए अजीत ने कहा,
तो अभी देखते हैं कोर्ट से बेल मिल जाता है हमारा पूरा, तो अभी कामा के मतलब बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा।
30 जुलाई 2018 को नागरिक रजिस्टर यानी NRC का फाइनल ड्राफ्ट जारी हुआ था। ज्योतिका दास का नाम तो इस लिस्ट में है, लेकिन असम के 40 लाख लोगों के साथ साथ ज्योतिका के दोनों बच्चों का नाम भी इसमें नहीं है। वजह है अजीत दास के माता पिता का 1960 के दशक में बांग्लादेश से भारत आकर बस जाना। वैसे उनकी तरह आए तमाम लोगों के पास अगर 1971 के पहले की नागरिकता का प्रमाण है तो उनका नाम NRC में या तो आ चुका है या आगे की लिस्ट में आने की संभावना है। जाहिर है जिन लाखों लोगों के नाम NRC में नहीं आए हैं उनके भीतर इस बात को लेकर डर है कि आगे क्या होगा। सरकार ने फिलहाल तो इस बात का भरोसा दिलाया है कि किसी के खिलाफ कदम नहीं उठाया जाएगा और सभी को सितंबर के अंत तक दोबारा दस्तावेज जमा करने का मौका दिया है। इस बीच असम के इस छोटे से गांव में ज्योतिका और अजीत दास के बच्चे इन दिनों बहुत खुश हैं क्योंकि पापा घर वापस लौट आए हैं। ये खुशी कब तक रहेगी इसका पता किसी को नहीं है। नितिन श्रीवास्तव, BBC असम।
जकार्ता में हो रहे एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार गई है, लेकिन एथलेटिक्स में उसे 2 स्वर्ण पदक आज मिले हैं। आइए सीधे चलते हैं जकार्ता खेल पत्रकार अमनप्रीत सिंह के पास। सबसे पहले अमनप्रीत, बताइए एथलेटिक्स के ट्रैक से क्या समाचार है?
आज अंतिम दिन था एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन का एशियाई खेलों में और 2 स्वर्ण पदक भारत को मिले। पहला जो स्वर्ण पदक दिलवाया ये दिलवाया जिनसन जॉनसन ने। ये वही जिनसन जॉनसन है जो 800 मीटर की दौड़ में रजत पदक पर ही रह गए थे, लेकिन आज उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया और 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। आखिरी के जो 80 मीटर का स्ट्रेच था खूब जोर लगा करके दौड़े और 3:44.72 में ये रेस पूरी करी और स्वर्ण अपने नाम किया। मंजीत सिंह से हारे थे 800 मीटर वाली दौड़, लेकिन इस रेस में मंजीत सिंह 4th स्थान पर ही रहे। दूसरा जो गोल्ड मिला भारत को ये 4x400 रिले वुमेन की टीम हिमा दास, MR पुवम्मा, सुनीता गायकवाड़, VK बिस्मया, इन्होंने भारत का जो दबदबा है इस इवेंट में वो जारी रखा और उन्होंने बड़ी आसानी के साथ कोई उनके आसपास भी नहीं पहुंचा और गोल्ड जीता।
अमनप्रीत, ये तो रही एथलेटिक्स की खबर। बहुत संक्षेप में, हॉकी में भारत का दिल टूट गया, 2-2 से बराबर रहे, सडन डेथ में भारत हारा, उसका वर्णन करिए किस तरह से हार हुई।
ये सडन डेथ में नहीं, शूट आउट में भारत हारा और ये बहुत दिल तोड़ने वाली खबर ही है क्योंकि जिस तरह से भारत ये खिलाड़ी फॉर्म में थे लग नहीं रहा था उनको कोई रोकेंगे और मलेशिया से भारत कभी जीत नहीं पाया है। सोच रहे थे कि इस बार ये स्टैटिस्टिक्स चेंज हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया। शूट आउट में PR सृजेश कोई भी गोल नहीं रोक पाए और फिर जो 5वां स्ट्रोक SV सुनील ने लेना था अगर वो कन्वर्ट करते तो मुकाबला जारी रहता, लेकिन उन्होंने ये मौका गवाया और वहीं भारत हारा। सब सोच रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल देखने को मिलेगा, वो अब नहीं होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जकार्ता से अमनप्रीत। और साउथैम्पटन से खबर ये है कि भारत ने इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
दिल्ली में आज मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और लेखकों के यहाँ छापेमारी और 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बुद्धिजीवियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई शोषित वर्गों की आवाज़ को कुचलने की कोशिश है। भारत प्रशासित कश्मीर को भारतीय संविधान के तहत मिलने वाले विशेष दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई से पहले क्षेत्र में स्कूल, दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। अमेरिका ने भारत को चेताया है कि अगर वो रूस से नए हथियार खरीदता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिलने की कोई गारंटी नहीं है। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने इदलिब में लोगों के लिए सुरक्षित रास्ते खोलने की अपील की है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे तिलक राज भाटिया, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।